चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला अध्याय 22 भक्ति की विधि। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। वे दिव्य करुणा के सागर हैं। यद्यपि भक्ति का विषय अत्यंत गुह्य है, फिर भी उन्होंने इस कलह के युग कलयुग में भी उसे इतनी सुंदरता से प्रकट किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ मनुष्य के संबंध का वर्णन किया है, यही समस्त वेदों का विषय है। कृष्ण सारे कार्यकलापों के केंद्र हैं। अब मैं भक्ति के लक्षणों के विषय में कहूंगा, जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण का आश्रय तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए, यही सारे शास्त्रों का निर्णय है और सारे संत पुरुषों ने यही निष्कर्ष निकाला है। जब वेद माता श्रुति से प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उसने कहा कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु हैं। इसी तरह श्रुति शास्त्रों के उप सिद्धांत स्मृति शास्त्र भी वहीं तुल्य वही आदेश देते हैं। ब्रात तुल्य पुराण अपनी माता के पद चिन्हों पर चलते हैं। हे मूर असुर के शत्रु, निष्कर्ष यह है कि आप ही एकमात्र आश्रय हैं। मैंने इसे तत्वतः समझ लिया है। कृष्ण अद्वैत परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि वे एक हैं, किंतु अपनी लीलाओं के लिए उनके विभिन्न स्वांश तथा शक्तियां हैं। कृष्ण अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। इनमें से कुछ स्वांश हैं और कुछ विभिन्नांश हैं। इस तरह वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक जगत तो वैकुंठ लोक है और भौतिक जगत विशाल ब्रह्मांड समूह है, जिनकी अध्यक्षता ब्रह्मा करते हैं। उनके स्वांश विस्तार वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, यथा चतुर्व्यूह जिसमें संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा वासुदेव आते हैं। सारे जीव विभिन्नांश हैं, यद्यपि वे कृष्ण के अंश हैं, किंतु उनकी गणना उनकी भिन्न शक्तियों में की जाती है। जीवों की दो कोटियां हैं, कुछ नित्य मुक्त हैं और कुछ नित्य बद्ध हैं। जो नित्य मुक्त हैं, वे कृष्ण भावना अमृत के प्रति सदैव सचेष्ट रहते हैं और वे भगवान कृष्ण के चरणों की प्रेममयी दिव्य सेवा करते हैं। उन्हें कृष्ण का नित्य संगी मानना चाहिए। वे कृष्ण सेवा का दिव्य आनंद लगातार प्राप्त करते रहते हैं। नित्य मुक्त भक्तों से भिन्न ऐसे भक्त जीव हैं जो भगवान की सेवा से सदैव विमुख रहते हैं। वे इस भौतिक जगत में निरंतर भक्त रहते हैं और उन्हें विभिन्न शरीर धारण करने के कारण नारकीय अवस्था में दुख भोगना पड़ता है। कृष्ण भावना अमृत का विरोध करने के कारण बद्ध जीव को बाह्य शक्ति माया रूपी पिशाचनी दंड देती है। इस तरह वह तीन प्रकार के कष्ट भोगने के लिए तैयार रहता है। शरीर तथा मन द्वारा दिए गए कष्ट, अन्य जीवों के शत्रु भाव से उत्पन्न कष्ट तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक उत्पात। इस तरह भद्र जीव काम वासनाओं का दास बन जाता है और जब वे वासनाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोध का दास बन जाता है और माया की लात खाता रहता है। वह इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते दैववश यदि किसी भक्त वैद्य की संगति पा लेता है तो उसके निर्देशों तथा मंत्रों से माया रूपी डायन भाग जाती है। इस तरह बद्ध जीव भगवान कृष्ण की भक्ति के संपर्क में आता है जिससे वह भगवान के और निकट पहुंच सकता है। हे प्रभु, काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की है किंतु उन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखलाई। उनकी सेवा करने में न तो मुझे लज्जा आई न ही मैंने कभी उन्हें त्यागने की इच्छा की। किंतु हे प्रभु, हे यदुवंश के शिरोमणि, हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हुई है और अब मैं उनका परित्याग कर रहा हूँ। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने से मना करता हूँ और अब आपके अभय चरण कमलों में शरण लेने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। यद्यपि भद्र जीव की मुक्ति के विविध साधन हैं, यथा कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति, किंतु ये सब भक्ति पर आश्रित हैं। भक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार के अन्य सारे साधन दुर्बल तथा तुच्छ हैं। कृष्ण की भक्ति किए बिना ज्ञान तथा योग से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। जब शुद्ध ज्ञान समस्त भौतिक आकर्षण से परे होता है किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं होता तो यह भौतिक मल से रहित होते हुए भी अधिक सुंदर नहीं लगता। तो फिर सकाम कर्मों का क्या लाभ जो प्रारंभ से कष्टप्रद और क्षणिक हैं? यदि वे भगवान की भक्तिमयी सेवा में काम नहीं आते भला वे किस तरह अत्यंत आकर्षक हो सकते हैं? जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, जो दान में अपना सर्वस्व दे डालते हैं, जो अपने पुण्य कर्म के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ध्यान तथा ज्ञान में लगे हैं और जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में अत्यंत पटु हैं, वे यदि अपने कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित नहीं करते तो वे कोई शुभ फल नहीं प्राप्त कर पाते। भले ही वे पुण्य कर्मों में क्यों न लगे हों, अतएव मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी महिमा सदैव कल्याण प्रद है। भक्ति के बिना कोरा ज्ञान मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई भगवत भक्ति में लगता है तो वह ज्ञान के बिना भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, आपकी भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई केवल ज्ञान के लिए या यह समझ कर कि ये सारे जीव आत्माएं हैं और यह जगत मिथ्या है, इसका परित्याग कर देता है तो उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। मात्र कष्टप्रद तथा अशुभ कर्म ही उसके हाथ लगते हैं। उसका प्रयास चावल से रहित भूसी को पीटने जैसा है। उसका प्रयास निष्फल हो जाता है। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति का अतिक्रमण कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आ चुके हैं वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। जीव माया की जंजीर द्वारा गले से बंधा हुआ है, क्योंकि वह यह भूल गया है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। यदि भक्त जीव भगवान की सेवा में लगता है और साथ ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो वह माया के जाल से छूट सकता है और कृष्ण के चरण कमलों में शरण पाने के योग्य हो सकता है। वर्णाश्रम संस्था के अनुयायी चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास के विधि विधानों को मानते हैं। यदि वे इन विधानों का पालन करते हैं किंतु भगवान कृष्ण की भक्तिमयी सेवा नहीं करते, तो वे भौतिक जीवन की नारकीय अवस्था में जा गिरते हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, इसी तरह उनकी बाहों से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उनकी कमर से वैश्य निकले और उनके पांवों से शूद्र निकले। ये चारों वर्ण तथा इनके चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास मिलकर मानव समाज को पूर्ण बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्णों तथा आश्रमों में अपना औपचारिक स्थान बनाए रखता है किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह अपने अहंकार पूर्ण उच्च स्थान से गिर जाता है और नारकीय स्थिति को प्राप्त होता है। मायावादी संप्रदाय के ऐसे अनेक तर्कवादी ज्ञानी हैं जो अपने आप को मुक्त मानते हैं और अपने आप को नारायण कहते हैं, किंतु जब तक वे कृष्ण भक्ति में नहीं लगते तब तक उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती। हे कमल नेत्र, जो अपने आप को इस जीवन में मुक्त मानते हैं किंतु आपकी भक्ति नहीं करते, वे अवश्य ही अशुद्ध बुद्धि वाले हैं। यद्यपि वे कठिन तपस्या करते हैं और उच्च आध्यात्मिक पद अर्थात निराकार ब्रह्म साक्षात्कार का पद प्राप्त करते हैं, किंतु वे पुनः नीचे गिरते जाते हैं, क्योंकि वे आपके चरण कमलों की पूजा करने की उपेक्षा करते हैं। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां कहीं सूर्य प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। ज्यों ही भक्त कृष्ण भावना अमृत अपनाता है, त्यों ही माया का अंधकार बहिरंगा शक्ति का प्रभाव तुरंत नष्ट हो जाता है। कृष्ण कृष्ण की बहिरंगा मोहक शक्ति जो माया कहलाती है। कृष्ण के समक्ष खड़े होने में हमेशा उसी तरह लज्जित होती है जिस तरह अंधकार सूर्य प्रकाश के समक्ष रहने में लज्जित होता है। किंतु माया उन अभागे व्यक्तियों को मोहग्रस्त कर लेती है जिनमें बुद्धि नहीं होती। बस वे केवल यही शेखी मारते हैं कि यह भौतिक संसार उनका है और वे इसके भोक्ता हैं। यदि कोई गंभीरता तथा निष्ठा के साथ यह कहता है कि हे कृष्ण, यद्यपि इस भौतिक संसार में मैंने आपको इतने वर्षों से भुला दिया था, किंतु आज मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, मैं आपका निष्ठावान दास हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा ले, तो वह तुरंत माया के पास से मुक्त हो जाता है। यह मेरा व्रत है कि यदि कोई यह कह कर एक बार भी मेरे शरणागत होता है कि हे प्रभु, आज से मैं आपका हूँ और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूँ और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। जीव कुसंगति के कारण भौतिक सुख, मोक्ष अथवा भगवान के निर्विशेष पहलू से तादात्म्य चाहता है या भौतिक शक्ति के लिए योग साधना में लग जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है तो वह भगवान श्री कृष्ण की गहन भक्ति में लगकर कृष्ण भावना अमृत को अंगीकार करता है। चाहे कोई सब कुछ चाहता हो या कुछ न चाहता हो, अथवा भगवान से तादात्म्य चाहता हो, वह तभी बुद्धिमान होता है जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है। जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं या परम सत्य में समा जाना चाहते हैं, यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाते हैं तो उन्हें तुरंत कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो जाती है, भले ही वे इसकी याचना न करें। अतः कृष्ण अत्यंत दयामय हैं। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है किंतु साथ ही भौतिक भोग या ऐश्वर्य चाहता है तो वह महामूर्ख है। निसंदेह वह उस व्यक्ति के समान है जो अमृत छोड़कर विष पीता है। क्योंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूँ, अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपन्नता क्यों दूं? इसके बदले में मैं इसे अपने चरण कमलों की शरण का अमृत लेने के लिए प्रेरित करूंगा और इसके भ्रामक भौतिक भोग की कामना को भुलवा दूंगा। जब भी कृष्ण से किसी इच्छा को पूरी करने की विनती की जाती है तो वे उसे अवश्य पूरी करते हैं, किंतु वे ऐसा वर नहीं देते जिसका भोग करने के बाद भी पुनः पुनः मांगने की आवश्यकता पड़े। जब किसी की अन्य इच्छाएं रहती हैं, किंतु साथ ही वह भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो कृष्ण उसे बलपूर्वक अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, जहां वह अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है। जब कोई अपनी इंद्रियों की तुष्टि हेतु भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है, किंतु उसके विपरीत उसे कृष्ण की सेवा करने का स्वाद मिल जाता है, तो वह अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़कर स्वेच्छा से कृष्ण का सनातन सेवक बन जाता है। जब ध्रुव महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वर दे रहे थे, तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, चूंकि मैं ऐश्वर्य युक्त भौतिक पद की खोज में था, इसलिए मैं कठिन तपस्या कर रहा था। अब तो मैंने आपको पा लिया है, जिन्हें बड़े बड़े देवता मुनि तथा राजा भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। मैं तो एक कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, किंतु इसके बदले मुझे बहुमूल्य रत्न मिल गया है। अतएव मैं इतना संतुष्ट हूँ कि अब मैं आपसे कोई वर नहीं चाहता। भक्त जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए कई योनियों में प्रवेश करते रहते हैं। सौभाग्यवश इनमें से कोई एक किसी न किसी प्रकार अज्ञान के सागर से मुक्त हो सकता है, जैसे किसी बहती नदी में अनेक बड़ी लकड़ियों में से सहसा कोई एक किनारे तक पहुंच जाए। यह सोचना मेरा भ्रम था कि चूंकि मैं इतना पतित हूँ, इसलिए मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन का कभी अवसर नहीं मिल सकेगा। प्रतियुत संयोग वश मुझ जैसा पतित व्यक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकता है। यद्यपि मनुष्य काल रूपी नदी की तरंगों में बहता रहता है, किंतु अंततः वह किनारे तक पहुंच सकता है। भाग्यवश ही मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करने के योग्य बनता है, और जब उसके भौतिक अस्तित्व की अवधि घटती है, तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसी संगति से कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण जागृत हो जाता है। हे प्रभु, हे अच्युत परम पुरुष, जब पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला व्यक्ति भौतिक संसार से मुक्ति पाने का पात्र बनता है, तो उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब वह भक्तों की संगति करता है, तो आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वोत्तम भक्तों के चरम गंतव्य हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं। कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण में स्थित गुरु के रूप में स्थित हैं। जब वे किसी भाग्यशाली बद्ध जीव पर दयालु होते हैं, तो वे उसे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु के रूप में भक्ति में प्रगति करने का उपदेश देते हैं। हे प्रभु, दिव्य कवि तथा अध्यात्म विज्ञान में पटु व्यक्ति भी आपसे पूरी तरह अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाए, यद्यपि उन्हें ब्रह्मा जितनी दीर्घायु दी गई थी, क्योंकि आप दो रूपों में बाह्य रूप में आचार्य की तरह और अंतःकरण में परमात्मा की तरह देहदारी जीव को अपने पास आने के निमित्त निर्देश देकर उनका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। भक्त की संगति करने से कृष्ण भक्ति में श्रद्धा जागृत होती है। भक्ति के कारण मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता है और इस तरह उसका भौतिक बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है। यदि कोई किसी तरह से मेरी कथा के प्रति आकृष्ट होता है और भगवद गीता में दी गई मेरी शिक्षाओं में श्रद्धा रखता है और यदि मनुष्य में भौतिक वस्तुओं के प्रति झूठी आसक्ति नहीं है और साथ ही वह भौतिक जगत में अधिक आसक्त नहीं होता है तो मेरे प्रति उसका सुप्त प्रेम भक्ति द्वारा जागृत हो उठेगा। शुद्ध भक्त की कृपा बिना किसी को भक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति की बात जाने दे, मनुष्य भव बंधन तक से नहीं छूट सकता। हे राजा रघुगण, शुद्ध भक्त महाजन या महात्मा के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण किए बिना मनुष्य भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कठिन तपस्या करने से, अर्चा विग्रह की भव्य पूजा करने से या संन्यास अथवा गृहस्थ आश्रम के नियमों का कठोरता से पालन करने से अथवा वेदों का अध्ययन करने से, जल में डूबे रहने या आग अथवा कड़ी धूप में खुला बैठने से भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। जब तक मानव समाज महात्माओं के वे भक्त जिनका भौतिक संपत्ति से कोई लगाव नहीं होता, उनके चरण कमलों की धूल को स्वीकार नहीं करता, तब तक मानव जाति भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर अपना ध्यान नहीं ले जा सकती। वे चरण कमल भौतिक जीवन के समस्त अवांछित कष्टों को दूर करने वाले हैं। सारे शास्त्रों का निर्णय है कि शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की संगति से ही मनुष्य सारी सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के मूल्य की तुलना जब स्वर्ग प्राप्ति या भौतिक बंधन से मुक्ति से नहीं की जा सकती तो भौतिक संपत्ति के रूप में सांसारिक वरदान के विषय में क्या कहा जाए, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें एक न एक दिन मरना ही है। कृष्ण इतने दयालु हैं कि अर्जुन को लक्षित करते हुए अपने उपदेशों के द्वारा उन्होंने सारे जगत को संरक्षण प्रदान किया है। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरे सर्वोत्कृष्ट उपदेश के रूप में ज्ञान के सर्वाधिक गुह्य अंश को बतला रहा हूँ। इसे मुझसे सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लाभ के लिए है। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस तरह तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। यद्यपि कृष्ण पहले ही वैदिक अनुष्ठान करने, वेदों में वर्णित सकाम कर्म करने, योगा अभ्यास करने तथा ज्ञान का अनुशीलन करने की क्षमता बतला चुके थे, किंतु ये अंतिम उपदेश अत्यंत बलवान है और अन्य सब से ऊपर है। यदि भक्त को इस आदेश की शक्ति में श्रद्धा है तो वह अपने सारे कार्य कलापों को त्याग कर भगवान कृष्ण की पूजा करता है। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवणम कीर्तनम विष्णुः द्वारा भक्ति के प्रति रुचि जागृत नहीं कर लेता तब तक उसे वेदोक्त विधानों के अनुसार कर्म करना पड़ता है। कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करने पर मनुष्य स्वतः सारे गौण कर्म संपन्न कर लेता है, ऐसा सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा कहलाता है। ऐसी श्रद्धा भक्तिमय सेवा को संपन्न करने के लिए अनुकूल सिद्ध होती है। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तना डालियां तथा टहनियां स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। इसी तरह उदर को भोजन देने से प्राण का पोषण होता है, जिससे सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार कृष्ण की पूजा करने से तथा उनकी सेवा करने से सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं। श्रद्धावान भक्त सचमुच ही भगवान की प्रेममयी सेवा के लिए सुपात्र है। भक्त की श्रद्धा के अनुसार ही उसकी गणना सर्वोच्च भक्त, मध्यम भक्त या कनिष्ठ भक्त के रूप में की जाती है। जो व्यक्ति तर्क तथा प्रामाणिक शास्त्रों में निपुण है और जिसे कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है, उसकी गणना सर्वोच्च भक्त के रूप में की जाती है। वह सारे संसार का उद्धार कर सकता है। जो तर्क तथा प्रामाणिक शास्त्रों को समझने में निपुण है और जिसका निश्चय दृढ़ होता है तथा जिसकी अगाध श्रद्धा होती है, जो अंधी नहीं होती, उसे उत्तम भक्त माना जाता है। जो प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित तर्क में अधिक दक्ष नहीं है किंतु दृढ़ श्रद्धा से युक्त है, वह द्वितीय श्रेणी का मध्यम भक्त माना जाता है। उसे भी अत्यंत भाग्यशाली मानना चाहिए। जो शास्त्रीय तर्क को भली भांति नहीं जानता किंतु जिसमें दृढ़ श्रद्धा होती है, वह मध्यम या द्वितीय श्रेणी का भक्त कहलाता है। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा लचकदार होती है, वह कनिष्ठ भक्त कहलाता है, किंतु विधि का क्रमशः पालन करने से वह प्रथम कोटि उत्तम के भक्त पद को प्राप्त कर लेता है। जिसकी श्रद्धा अत्यंत प्रबल नहीं होती और जिसने अभी शुरुआत की है, उसे नया कनिष्ठ भक्त समझना चाहिए। भक्त को उसकी अनुरक्ति तथा प्रेम के अनुसार श्रेष्ठतर अथवा श्रेष्ठतम माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में निम्नलिखित लक्षण निश्चित किए गए हैं। भक्ति में उन्नत व्यक्ति हर वस्तु के भीतर आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखता है। फलस्वरूप वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप को समस्त कारणों के कारण के रूप में देखता है और यह समझता है कि सारी वस्तुएं उन्हीं में स्थित हैं। मध्यम भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है, सभी भक्तों के प्रति मैत्री भाव रखता है और नए भक्तों तथा अज्ञानी व्यक्तियों पर अत्यंत कृपालु रहता है। जो लोग भक्ति से ईर्ष्या रखते हैं, उनकी वह उपेक्षा करता है। प्राकृत अथवा भौतिकतावादी भक्त शास्त्रों का जानबूझकर अध्ययन नहीं करता और न शुद्ध भक्ति के वास्तविक स्तर को समझने का प्रयास करता है। फलतः वह उन्नत भक्तों के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित नहीं करता। किंतु वह चाहे तो अपने गुरु से या परिवार से सीखी हुई पूजा की विधि विधान का पालन कर सकता है। उसे भौतिक स्तर पर ही माना जाना चाहिए। यद्यपि वह भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, ऐसा व्यक्ति भक्त प्राय नया भक्त या भक्ता भास होता है, क्योंकि उसे वैष्णव दर्शन से थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वैष्णव वह है जिसने समस्त उत्तम दिव्य गुण विकसित कर लिए हो। कृष्ण भक्त में कृष्ण के सारे सद्गुण क्रमशः विकसित होते हैं। कृष्ण में जिस व्यक्ति की अविचल भक्तिमयी श्रद्धा होती है, उस व्यक्ति में कृष्ण तथा देवताओं के समस्त सद्गुण सदा प्रकट होते हैं। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, क्योंकि वह उस भौतिक जगत में मानसिक कल्पना में लगा रहता है जो भगवान का बाह्य लक्षण है। ये सारे दिव्य गुण शुद्ध वैष्णवों के लक्षण हैं और इनकी पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती, किंतु मैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणों को इंगित करने का प्रयास करूंगा। भक्तगण सदैव कृपालु, विनीत, सत्यवादी, सबके प्रति संभाव रखने वाले, निर्दोष, उदार, मृदु तथा स्वच्छ होते हैं। उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती और वे हर एक के लिए उपकार का कार्य करते हैं। वे शांत, कृष्ण के शरणागत तथा इच्छा रहित होते हैं। वे भौतिक उपलब्धियों के प्रति उदासीन रहते हैं और भक्ति में स्थिर रहते हैं। वे छह दुर्गुणों काम, क्रोध, लोभ इत्यादि पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। वे आवश्यकता अनुसार खाते हैं और उन्मत्तता से अप्रभावित होते हैं। वे दूसरों का आदर करने वाले, गंभीर, दयालु तथा झूठी प्रतिष्ठा से रहित होते हैं। वे मैत्रीपूर्ण, कवि, दक्ष तथा मौन होते हैं। भक्तगण सदैव सहिणु तथा दयालु होते हैं। वे प्रत्येक जीव के शुभ चिंतक होते हैं। वे शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं और उनका कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए वे अत्यंत शांत होते हैं। ये भक्तों के आभूषण हैं। समस्त शास्त्रों तथा महापुरुषों का यह निर्णय है कि शुद्ध भक्त की सेवा करने से मुक्ति पथ प्राप्त होता है, किंतु भौतिक भोग तथा स्त्रियों पर आसक्त रहने वाले भौतिकतावादी लोगों की संगति करने से अंधकार का पथ प्राप्त होता है। जो वास्तव में भक्त हैं, वे विशाल हृदय वाले, सबके प्रति संभाव रखने वाले तथा अत्यंत शांत होते हैं। वे कभी क्रोधित नहीं होते और सारे जीवों से मैत्री भाव रखते हैं। कृष्ण भक्ति का मूल कारण महान भक्तों की संगति है। कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम के जागृत हो जाने पर भी भक्तों की संगति अत्यावश्यक है। हे प्रभु, हे अच्युत परम पुरुष, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांडों में घूमते घूमते भौतिक संसार से मोक्ष पाने के योग्य बनता है, तब उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब वह भक्तों की संगति करता है तब आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वोत्कृष्ट भक्तों के सर्वोच्च लक्ष्य तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हे भक्तों, समस्त पापों से मुक्त सब लोगों, मैं तुम सब से उसके विषय में पूछता हूँ जो सारे जीवों के लिए परम कल्याणकारी है। इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के साथ आधे क्षण की संगति भी मानव समाज के लिए सबसे बड़ा खजाना है। आध्यात्मिक रूप से बलशाली भगवत संदेश की समुचित चर्चा केवल भक्तों के समाज में हो सकती है और उनके संग में श्रवण करना अत्यंत प्रिय लगता है। यदि भक्तों से सुना जाता है तो दिव्य अनुभव का मार्ग तुरंत खुल जाता है और क्रमशः दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है जो कालांतर में आकर्षण तथा भक्ति में बदल जाती है। वैष्णव को सामान्य लोगों की संगति से हमेशा बचना चाहिए। सामान्य लोग बुरी तरह से भौतिकता में, विशेषतया स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। वैष्णवों को उन लोगों की भी संगति से बचना चाहिए जो कृष्ण भक्त नहीं है। संसारी लोगों की संगति से मनुष्य सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, तपस्या, यश, क्षमा, मन का संयम, इंद्रिय निग्रह, ऐश्वर्य तथा समस्त अवसरों से विहीन हो जाता है। मनुष्य को कभी भी ऐसे निरे मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और जो स्त्रियों के हाथ के पशु के समान खिलौना बना हुआ हो। अन्य किसी वस्तु से आसक्ति के फल स्वरूप उत्पन्न मोह तथा बंधन उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि स्त्री या स्त्रियों पर अत्यंत अनुरक्त रहने वाले पुरुषों की संगति करने से होता है। पिंजरे के भीतर बंदी होने तथा जलती अग्नि के द्वारा गिर जाने जैसे कष्टों को सहन कर लेना कृष्ण भावना से विहीन लोगों की संगति करने से श्रेयस्कर है। ऐसी संगति महान विपदा पूर्ण है। जो लोग कृष्ण भावना अमृत से विहीन होने के कारण पुण्य कर्मों से रहित हैं, उनको देखना तक नहीं चाहिए। मनुष्य को बुरी संगति त्याग कर तथा चारों वर्णों और चारों आश्रमों के विद्वानों की भी उपेक्षा करके बिना किसी द्विधा के पूर्ण विश्वास के साथ भगवान कृष्ण की एकमात्र शरण ग्रहण करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्यों को सभी भौतिक आसक्ति का त्याग करना चाहिए। यदि तुम सारे धार्मिक तथा वृत्ति परक कर्तव्यों को त्याग कर मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करते हो तो मैं तुम्हें जीवन के सारे पापमय फलों से सुरक्षा प्रदान करूंगा। तुम चिंता मत करो। कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं। वे सदैव अत्यधिक कृतज्ञ तथा उदार हैं और समस्त क्षमताओं से युक्त हैं। विद्वान व्यक्ति अन्य किसी की पूजा करने के लिए कृष्ण को नहीं छोड़ते। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। आप सत्यनिष्ठ तथा कृतज्ञ मित्र भी हैं। भला ऐसा कौन विद्वान व्यक्ति होगा जो आपको त्याग कर अन्य किसी की चरण ग्रहण करेगा। आप अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी आप उन्हें अपने आप को भी दे देते हैं। फिर भी ऐसे कार्य से न आप में वृद्धि होती है न कमी आती है। जब कोई अनुभवी व्यक्ति कृष्ण तथा उनके दिव्य गुणों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह स्वाभाविक रूप से अन्य कार्यों को त्याग देता है और भगवान की सेवा करने लगता है। उद्धव इसका प्रमाण देते हैं। यह कैसा अद्भुत है कि बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में घातक विष का लेप करके और स्तन पान करा कर कृष्ण को मारना चाहती थी, फिर भी भगवान कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया और इस तरह उसने कृष्ण की माता के योग्य गति प्राप्त की। तो मैं उन कृष्ण के अतिरिक्त और किसकी शरण ग्रहण करूं जो सर्वाधिक दयालु है। भक्त दो प्रकार के होते हैं, अकिंचन जो पूर्णतया संतुष्ट और समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होते हैं, और वे जो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत होते हैं। उनके गुण एक से होते हैं, किंतु जो कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत हैं, उनमें एक दिव्य गुण और पाया जाता है, वह है आत्मसमर्पण का गुण। शरणागति के छह विभाग ये हैं: भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना, कृष्ण द्वारा संरक्षण में पूर्ण विश्वास होना, भगवान को संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, पूर्ण आत्मसमर्पण तथा दीनता। जिसका शरीर पूर्णतया समर्पित है वह उस पवित्र स्थान की शरण लेता है जहाँ कृष्ण ने उनकी लीलाएं की थी। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं आपका हूँ। वह इसे मन से जानकर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। जब इस तरह भक्त कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देता है तो कृष्ण उसे अपने अंतरंग पार्षदों में से एक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जन्म तथा मृत्यु का शिकार बनने वाला जीव जब सारे भौतिक कार्यों को त्याग देता है, मेरे आदेशों का पालन करने में अपना जीवन अर्पित कर देता है और मेरे आदेशों के अनुसार कर्म करता है तो वह अमरत्व को प्राप्त करता है। इस तरह वह मेरे साथ प्रेम रस का विनिमय करने से प्राप्त आध्यात्मिक आनंद को भोगने के लिए उपयुक्त बन जाता है। हे सनातन, अब कृपया भक्ति संपन्न करने के विधानों के विषय में सुनो। इस विधि से मनुष्य भगवत प्रेम की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है जो सर्वाधिक वांछित महाधन है। जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है, यदि उसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है तो वह साधन भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति हर जीव के हृदय के भीतर निरंतर स्थित रहती है। इस सनातन भक्ति का उदय ही साधन भक्ति द्वारा साध्य होने वाला फल है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि आध्यात्मिक कार्यकलाप भक्ति के स्वाभाविक लक्षण हैं। इसका तटस्थ लक्षण यह है कि इससे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदयों में नित्य स्थापित रहता है। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाए। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है, तब यह प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत हो उठता है। साधन भक्ति की दो विधियां हैं, एक है वैधी भक्ति तथा दूसरी रागानुगा भक्ति। जिन्हें रागानुगा भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, वे शास्त्रों में वर्णित विधानों के अनुसार प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी भक्ति वैधी भक्ति कहलाती है। हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, जो परम नियंता है और जो सारे जीवों के कष्टों को सदा दूर करने वाले हैं, उनका प्रामाणिक स्रोत से श्रवण, उनकी महिमा का गायन तथा उनका स्मरण उन लोगों द्वारा सदैव किया जाना चाहिए जो निर्भय बनना चाहते हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण वर्ण प्रकट हुए, इसी तरह उनकी बाहुओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उनकी कमर से वैश्य प्रकट हुए और उनके पैरों से शूद्र प्रकट हुए। ये चारों वर्ण तथा उनके आध्यात्मिक आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास मिलकर मानव समाज को पूर्ण बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्णों तथा आश्रमों में केवल औपचारिक स्थिति बनाए रखता है, किंतु परम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह अपने गर्भित स्थान से गिरकर नरक में जा पहुंचता है। कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम हैं, उनका सतत स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लिखित सारे नियम तथा निषेध इन्हीं दोनों नियमों के अधीन होने चाहिए। मैं भक्ति के विविध साधना अंगों के विषय में कुछ कहूंगा, जिनका विस्तार अनेक प्रकार से हुआ है। मैं मुख्य साधनांगों के विषय में संक्षेप में कहना चाहता हूँ। साधन भक्ति के मार्ग में निम्नलिखित अंगों का पालन करना चाहिए। एक, प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसी से दीक्षा ली जाए, उसी की सेवा की जाए, गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाए और भक्ति की शिक्षा के लिए प्रश्न किए जाएं, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन किया जाए तथा गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। अगले अंक इस प्रकार है, कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना तथा कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना। जहाँ कृष्ण हो, यथा वृंदावन मथुरा या कृष्ण मंदिर में, वहीं रहना। जीविका निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतना ही धन कमाना। एकादशी के दिन उपवास रखना। मनुष्यों को चाहिए कि वह दात्री वृक्षों, बरगद वृक्षों, गौवों, ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा करे, उसे भक्ति तथा पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों से बचना चाहिए।
12वां अंग है अभक्तों की संगति त्याग देना। मनुष्य को असंख्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए, मात्र प्रमाण देने तथा टीका करने के उद्देश्य से अनेक शास्त्रों का अधूरा अध्ययन नहीं करना चाहिए।
भक्त को चाहिए कि वह हानि तथा लाभ को समान माने। भक्त को शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। भक्त को न तो देवताओं की पूजा करनी चाहिए, न ही उनका अनादर करना चाहिए। इसी तरह भक्त को चाहिए कि वह न तो अन्य शास्त्रों का अध्ययन करे, न उनकी आलोचना करे। भक्त को भगवान विष्णु या उनके भक्तों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। भक्त को समाचार पत्र अथवा स्त्री पुरुषों की प्रेम कथाओं वाली पुस्तकें तथा इंद्रियों को अच्छे लगने वाले विषयों को पढ़ने या सुनने से बचना चाहिए। भक्त को चाहिए कि मन या वचन से किसी जीव को न सताए, भले ही वह कितना ही तुच्छ क्यों न हो। भक्ति में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए करणीय कर्म इस प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, वंदन, सेवा, दास्य भाव को स्वीकार करना, मित्र बनना तथा पूर्णतया समर्पण करना। भक्त को चाहिए कि वह अर्चा विग्रह के समक्ष नृत्य करे, उनके समक्ष गाए, उनसे मन की बात कहे, उनको नमस्कार करे, उनके तथा गुरु के समक्ष खड़ा होकर सम्मान जताए, उनका अथवा गुरु का अनुगमन करे तथा विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाए या मंदिर में अर्चा विग्रह का दर्शन करने जाए। भक्त को चाहिए कि वह मंदिर की परिक्रमा करे, सत्व पाठ करे, मंद स्वर में जप करे, सामूहिक कीर्तन करे, अर्चा विग्रह पर चढ़ी धूप तथा फूलों की माला को सूंघे तथा अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए भोजन का शेष ग्रहण करे। उसे चाहिए कि आरती तथा उत्सवों में सम्मिलित हो, अर्चा विग्रह का दर्शन करे, अपनी प्रिय वस्तु अर्चा विग्रह पर चढ़ाए, अर्चा विग्रह का ध्यान करे तथा भगवान से संबंधित लोगों की सेवा करे। तदीय का अर्थ है तुलसी दल, कृष्ण के भक्त। कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा तथा वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत। कृष्ण यह देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं कि उनका भक्त तुलसी, वैष्णव, मथुरा तथा भागवत की सेवा करे। भक्त को चाहिए कि वह कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करे, उनकी कृपा के लिए लालायित रहे, भक्तों के साथ मिलकर विभिन्न उत्सवों में यथा कृष्ण जन्माष्टमी या रामचंद्र के जन्मोत्सव में भाग ले। भक्त को चाहिए कि सभी प्रकार से कृष्ण की शरण में जाए, कार्तिक व्रत जैसे विशेष व्रत रखे। भक्ति के 64 कार्यों में से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तों की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, श्रीमद् भागवत सुने, मथुरा में वास करे तथा श्रद्धा सम्मान पूर्वक अर्चा विग्रह की पूजा करे। भक्ति के ये 5 अंग सर्व अंगों में श्रेष्ठ हैं। यदि इन 5 को थोड़ा सा भी संपन्न किया जाए तो कृष्ण प्रेम जागृत होता है। अर्चा विग्रह के चरण कमलों की पूजा पूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम सहित करनी चाहिए। शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत के अर्थ का आस्वादन करना चाहिए। उसे अपने से अधिक उन्नत तथा अपने ही जैसे भगवत प्रेमी भक्तों की संगति करनी चाहिए। भक्त को भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए और वृंदावन में निवास करना चाहिए। इन पांच सिद्धांतों की शक्ति अद्भुत और समझ पानी कठिन है। अपराध रहित श्रद्धा विहीन व्यक्ति भी उनसे थोड़ा भी संबंधित होने पर कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम को जागृत कर सकता है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है तो चाहे वह भक्ति की एक विधि को संपन्न करे या अनेक विधियों को, उसमें भगवत प्रेम की तरंगे जागृत हो ही जाती हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भक्ति की नौ विधियों में से केवल एक का पालन करते हैं तो भी उन्हें चरम सफलता प्राप्त होती है। महाराज अम्बरीश जैसे भक्तगण नवो विधियों का सदैव पालन करते हैं और वे भी चरम सफलता प्राप्त करते हैं। महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण केवल विष्णु के विषय में सुनकर प्राप्त की। यही उनकी चरम सिद्धि थी। सुखदेव गोस्वामी ने केवल श्रीमद् भागवत सुनाकर पूर्णता प्राप्त की। प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण करके पूर्णता प्राप्त की। लक्ष्मी ने महाविष्णु के दिव्य चरण दबाकर पूर्णता प्राप्त की। महाराज पृथु ने अर्चा विग्रह की पूजा करके तथा अक्रूर ने भगवान की स्तुति करके पूर्णता प्राप्त की। वज्रांगजी हनुमान ने भगवान रामचंद्र की सेवा करके तथा अर्जुन ने कृष्ण का सखा बनकर पूर्णता प्राप्त की। बलि महाराज ने कृष्ण के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पित करके पूर्णता प्राप्त की। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में, अपनी वाणी को आध्यात्मिक जगत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर बुहारने तथा धोने में, अपने कानों को परमेश्वर की कथाएं सुनने में, अपनी आंखों को मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह का दर्शन करने में, अपने शरीर को वैष्णवों के चरण कमलों का स्पर्श करने में तथा उनका आलिंगन करने में, अपने नथुनों को कृष्ण के चरण कमलों पर चढ़ी तुलसी की पत्तियों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को कृष्ण को अर्पित भोजन का आस्वादन करने में, अपने पांवों को वृंदावन या मथुरा जैसे तीर्थ स्थानों तक या भगवान के मंदिर तक जाने में और अपने सिर को भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने तथा उनकी स्तुति करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान की निष्ठापूर्ण सेवा करने में लगाया। इस तरह महाराज अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाया। फलस्वरूप उन्होंने अपने सुप्त भगवत सेवा लालसा को जागृत किया। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक शास्त्रों के आदेशानुसार समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर कृष्ण की प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लग जाता है तो वह देवताओं, ऋषियों, मुनियों या पूर्वजों से उऋण हो जाता है। जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कर्तव्यों का परित्याग करके सबको शरण देने वाले मुकुंद के चरण कमलों में शरण ग्रहण कर ली है, वह देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत पूर्वजों का ऋणी नहीं रह जाता। यद्यपि शुद्ध भक्त वर्णाश्रम के सारे नियमों का पालन नहीं करता, किंतु वह कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करता है, इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होती। किंतु यदि संयोगवश कोई भक्त पाप कर्म में लिप्त हो जाता है तो कृष्ण उसे शुद्ध कर लेते हैं, उसे विधिवत प्रायश्चित नहीं करना पड़ता।
जिसने सब कुछ त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों में शरण ले ली है, वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। यदि संयोगवश वह किसी पाप कर्म में लिप्त हो जाता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके पापों को सरलता से दूर कर देते हैं।
भक्ति के लिए ज्ञान तथा त्याग का मार्ग आवश्यक नहीं है। हाँ, कुछ सद्गुण यथा अहिंसा तथा मन और इंद्रिय का नियंत्रण भगवान कृष्ण के भक्त में स्वतः आ जाते हैं। जो मेरी भक्ति में पूरी तरह से लगा हुआ है, जिसका मन मेरे भक्ति योग में स्थिर है, उसके लिए तार्किक ज्ञान तथा शुष्क वैराग्य का मार्ग अधिक लाभप्रद नहीं होता। हे व्याज, तुमने जो अहिंसा जैसा सद्गुण अपना रखा है वह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वे ईर्ष्यावश अन्यों को कष्ट नहीं देना चाहते। हे सनातन, मैं वैदिक भक्ति के विषय में विस्तार से बतला चुका हूँ। अब मुझसे स्वतः सपूर्त रागानुगा भक्ति तथा उसके लक्षणों के विषय में सुनो। वृंदावन के मूल निवासी कृष्ण से रागात्मिकता भक्ति द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसी रागात्मिकता भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो उसकी भक्ति रागानुगा स्वतः सपूर्त भक्ति कहलाती है। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अनुरक्त हो जाता है तब उसकी प्रेम करने की सहज प्रवृत्ति भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाती है। यह दिव्य अनुराग कहलाता है और इस अनुराग के अनुसार की गई भक्ति रागात्मिकता भक्ति अर्थात स्वतः सपूर्त भक्तिमयी सेवा कहलाती है।
रागात्मिकता प्रेम का मूल लक्षण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रगाढ़ अनुराग। भगवान में तल्लीनता तटस्थ लक्षण है।
इस तरह जो भक्ति राग प्रगाढ़ आसक्ति से युक्त होती है वह रागात्मिकता कहलाती है। यदि कोई भक्त ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है तो वह परम भाग्यशाली माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी दिव्य चेतना के वशीभूत होकर वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो वह शास्त्रों के आदेशों या तर्कों की परवाह नहीं करता। यही राग का मार्ग है। वृंदावन के निवासियों में स्वतः सपूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्ति की जीवंत अभिव्यक्ति तथा प्राकट्य देखा जाता है। जो भक्ति वृंदावन वासियों की भक्ति के अनुरूप होती है वह रागानुगा भक्ति अर्थात स्वतः स्फूर्त प्रेम जागृत होने पर संपन्न होने वाली भक्ति कहलाती है। जब कोई स्वरूप सिद्ध उन्नत भक्त वृंदावन के भक्तों के कार्यों शान दास्य सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य रसों के विषय में सुनता है तो वह इनमें से किसी एक की ओर उन्मुख हो जाता है और उसकी बुद्धि उसी ओर आकृष्ट हो जाती है। निसंदेह वह उस विशेष भक्ति की ओर लुब्ध हो जाता है। जब ऐसा लोभ उत्पन्न हो जाता है तो उसकी बुद्धि शास्त्र के आदेश या तर्क पर आश्रित नहीं रहती। रागानुगा भक्ति बाह्य तथा आंतरिक इन दो विधियों से संपन्न की जा सकती है। जब उन्नत भक्त स्वरूप सिद्ध होता है तो वह बाहर से कनिष्ठ जैसा बना रहता है और श्रवण तथा कीर्तन जैसे समस्त शास्त्रीय आदेशों का पालन करता रहता है, किंतु वह अपनी मूल शुद्ध स्वरूप सिद्ध स्थिति में अपने मन में विशिष्ट विधि से वृंदावन में कृष्ण की सेवा करता है। वह 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। रागानुगा भक्ति की ओर उन्मुख उन्नत भक्त साधक को वृंदावन में कृष्ण के पार्षद विशेष के कार्यों का अनुभ्रमण करना चाहिए। उसे बाहर से वैदिक भक्त की तरह भक्ति करने के साथ साथ अपनी स्वरूप सिद्ध अवस्था में अंदर ही अंदर सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे बाहर तथा भीतर दोनों ही रूप में भक्ति करनी चाहिए। वस्तुतः कृष्ण को वृंदावनवासी अत्यंत प्रिय हैं। यदि कोई रागानुगा भक्ति करना चाहता है तो उसे वृंदावनवासियों का अनुसरण करना चाहिए और अपने मन में निरंतर कृष्ण सेवा करनी चाहिए। भक्त को चाहिए कि वह अपने अंतर में सदैव कृष्ण का चिंतन करे और ऐसे प्रिय भक्त को चुने जो वृंदावन में कृष्ण का सेवक हो। उसे उस सेवक की कथाओं के विषय में तथा कृष्ण के साथ उसके प्रेममय संबंध के विषयों का सदैव चिंतन करना चाहिए और उसे वृंदावन में निवास करना चाहिए। हाँ, यदि कोई शरीर से वृंदावन नहीं जा सकता तो उसे मानसिक रूप से वहां रहना चाहिए। कृष्ण भक्त अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ दास, कुछ मित्र, कुछ माता पिता तथा कुछ प्रेयसी रूप में। जो भक्त इनमें से अपनी इच्छानुसार किसी भी राग वृत्ति में स्थित होते हैं उन्हें राग मार्ग में प्रवृत्त माना जाता है। हे माता देवहूति, हे शांति की प्रतीक, मेरा काल चक्र रूपी शस्त्र उन लोगों का विनाश नहीं करता जिन्हें मैं अत्यंत प्रिय हूँ, जिनके लिए मैं परमात्मा पुत्र मित्र गुरु हित चिंतक पूज्य देव तथा इच्छित लक्ष्य हूँ। क्योंकि भक्तगण सदैव मुझ में अनुरक्त रहते हैं अतः वे काल के दूतों द्वारा कभी विनष्ट नहीं होते। मैं उन लोगों को बारंबार नमस्कार करता हूँ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान उत्सुकता पूर्वक पति पुत्र सखा भाई पिता या घनिष्ठ मित्र के रूप में करते हैं। यदि कोई भगवान की रागानुगा भक्ति में प्रवृत्त होता है तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के लिए उसका स्नेह बढ़ जाता है। स्नेह के बीज में आसक्ति होती है जिसके दो नाम हैं, रति तथा भाव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसी आसक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। जिस विधि से भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त की जा सकती है उसका विस्तृत वर्णन मैंने अभिधेय नामक भक्ति के संपन्न करने के रूप में किया है। हे सनातन, मैंने साधन भक्ति का संक्षिप्त वर्णन किया है जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का साधन है। इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भी साधन भक्ति की विधि को सुनता है वह शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम पूर्वक शरण प्राप्त करता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरिता अमृत की मध्य लीला के 22वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ जिसमें भक्ति करने का वर्णन हुआ है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे